टीवी होना तो कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं है, टीवी कौन सी कीमत का आता है, मेरा ख्याल है शायद कितना का आता होगा, 30-40 हज़ार का। तो स्कॉलर्स ने इससे ये डिराइव किया है, पॉइंट ये है कि इन लोगों के पास कश्ती थी लेकिन अल्लाह फिर भी इनको मिस्कीन कह रहा है, इसलिए कि कश्ती तो थी लेकिन वो कश्ती होने से, सिर्फ खड़ा करने से इनको जो है अर्निंग नहीं मिलती थी, उस कश्ती को लेकर इनको मेहनत करनी होती थी, और उसके बाद भी ये किसी एक की नहीं थी, 2-3 लोगों की थी, तो जो मेहनत करते थे वो भी शेयर हो जाता था आपस में। तो ये ऐसे लोग थे जो हार्डली जो हैं वो किसी तरह से अपना सर्वाइवल कर रहे थे, मसाकीन की कैटेगरी में आते हैं, फ़कीर नहीं थे याद रखें, इसलिए आपको बताया कि फ़कीर जिसके पास कुछ भी नहीं होता, फ़कीर वो होता है, मिस्कीन जिसके पास होता है लेकिन वो उसकी ज़रूरियात के लिए काफ़ी नहीं होता। तो यहाँ पर इस लफ्ज़ को मेंशन कर दिया गया, और एक लफ्ज़ से कुरान ने पूरा इमेज दे दिया कि क्योंकि ये मसाकीन की कश्ती थी तो इनका मुस्तकबिल इसके ऊपर डिपेंडेंट था, इनकी डे टू डे लाइफ इसके ऊपर डिपेंडेंट थी, ये कश्ती इनके सर्वाइवल का वाहिद सहारा थी, ये ज़रूरतमंद लोग थे, ये सारी बात यहाँ पर आ गई। तो आगे हज़रत खदर ने क्या कहा, अब हज़रत मूसा को बता रहे हैं ये कश्ती तो मिस्कीनों की थी, फ़अरदतु अन अईबहा, तो मैंने चाहा कि मैं इसको ऐबदार कर दूँ, फर्स्ट पर्सन में बात की, कह रहे मैंने चाहा कि मैं इसको ऐबदार कर दूँ। क्यों कहा इन्होंने मैंने चाहा, इसलिए कि हमारी शरीयत का उसूल क्या है, दीन हमें क्या सिखाता है कि हम किसी भी ऐसे काम की जिसमें कोई नुक्स हो, कमी हो, ख़ता हो, उसकी काम की, उस अमल की एसोसिएशन अल्लाह से नहीं करते। इन्होंने कहा कि मैंने चाहा कि मैं उसको ऐबदार कर दूँ, वकान वराअहुम मलिकुन, और उनके आगे एक बादशाह था, याखुज़ुकुल्ल सफ़ीनतिन, जो कि ज़बरदस्ती सबकी कश्तियों को छीन लेता था, सीज कर लेता था, कॉन्फिस्केट कर लेता था। यहाँ जो अल्फाज आए हैं वकान वराअहुम, ये वराआ का जो लफ्ज़ है ये अरबी ज़ुबान में आप जब पढ़ती हैं, मिसाल के तौर पर आता है कुरान में वरा ज़ुहूरिहिम, तो हम इसका तर्जुमा करते हैं उनकी पीठों के पीछे, बैक बैक के लिए इस्तेमाल होता है ना वरा, ये ऐसा लफ्ज़ है अरबी ज़ुबान में जो कि उन अल्फाज में आता है जो अपने अंदर दो मफहूम रखते हैं और दूसरे के अपोज़िट मफहूम रखते हैं। मिसाल के तौर पर वरा का मफहूम पीछे भी होता है और वरा का मफहूम आगे भी होता है, इसलिए कि हदीस से पता चलता है कि ये लोग जो थे कश्ती वाले, ये आगे एक जगह पर जा रहे थे, जहाँ से आए थे वहाँ की बात नहीं हो रही थी, जहाँ ये जा रहे थे वहाँ वो बादशाह था। तो ये जो तर्जुमा बनेगा वकान वराअहुम मलिकुन, तो जहाँ वो जा रहे थे और उनके आगे एक बादशाह था, अहेड ऑफ यू के मफहूम इसके अंदर आते हैं। और ये वरा व लफ्ज़ है मिन हम असमा ए अददात, जिनमें एक दूसरे की ज़िद आती है, अपोज़िट आती है। अरबी में एक लफ्ज़ आता है शरा, ख़रीदना बेचना, इस तरह आता है ना अरबी ज़बान में, कुरान में इस तरह बहुत इस्तेमाल होता है। शरा आता है शीन रॉ और या के साथ लिखा जाता है, उसका मतलब होता है ख़रीदना बेचना, दोनों एंगल से आता है, परचेज एंड सेल। कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर ये ख़रीदने की बात है या बेचने की बात है, कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है या उसके आगे जो हरूफ आ रहे होते हैं उनसे पता चलता है। तो ये भी वही लफ्ज़ है वराआ, जिसका मफहूम आगे भी आता है और पीछे भी आता है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद जो थे वो इस आयत को पढ़ते थे वकान अमामहुम मलकुन, अमामा आगे के लिए आता है ना, और उनके आगे जहाँ वो सफ़र करके जा रहे थे वहाँ पर एक बादशाह था, यानी जिस तरफ ट्रैवल कर रहे थे वहाँ पर एक बादशाह था जो क्या करता था, जो ज़बरदस्ती हर एक की कश्तियों को कॉन्फिस्केट कर लेता था। सूरह जासिया में आता है, सूरह जासिया की आयत नंबर 10 में, वराअहुम जहन्नम, उनके आगे जहन्नम है। और ये उस मुकाम में, जो कॉन्टेक्स्ट अगर आप सूरह जासिया का पढ़ें तो ये जब आता है वहाँ पर आता है कि जब अल्लाह ताला जो हैं वो स्केल के प्रोसेस से गुजार देंगे, अमाल तोल लिए जाएंगे, तो जो अगला प्रोसेस होगा वो होगा सिरात का प्रोसेस, और सिरात कायम किया जाएगा जहन्नम के ऊपर। तो जब अल्लाह ताला ने कहा मिन वराइहिम जहन्नम, उनके आगे जहन्नम होगी, तो स्केल के पीछे जहन्नम नहीं है कि उनके पीछे जहन्नम होगी, नहीं, उनके अगला स्टेप जो होगा वो जहन्नम का होगा। तो वरा का लफ्ज़ दोनों तरह इस्तेमाल होता है, पीछे के लिए भी आगे के लिए भी, डिपेंड अपॉन कॉन्टेक्स्ट क्या है। आप और मैं अपनी मर्ज़ी से इसका तर्जुमा नहीं कर सकते, मुफस्सरीन के काम को सामने रख कर इसको समझा जाता है। तो बताया कि एक बादशाह था वहाँ पे जो कि हर कश्ती को ज़बरदस्ती ले लेता था, उसके लिए कुछ आता है कि उसको अपनी नेवल फोर्सेस जो थी वो स्ट्रॉन्ग करनी थी, और उसको उन दिनों में जो थी वो कश्तियों की ज़रूरत थी, तो वो एक टायरेंट था, जालिम था, और ज़बरदस्ती हर कश्ती को ले लिया करता था। अब क्योंकि यहाँ पर ये बात मिस्कीन के लफ्ज़ से वाज़े हो गई थी कि ये वो लोग थे जिनकी कश्ती इनकी टोटल लाइफ थी, इनकी डिपेंडेंसी इनकी कश्ती के ऊपर थी। तो अब हजरत खदर ने कश्ती को जो ऐबदार किया था, उन्होंने कश्ती को डिस्ट्रॉय नहीं कर दिया था, तोड़ फोड़ नहीं दिया था, बस एक डिफेक्ट डाला था उसके अंदर, उसके अंदर एक सुराख कर दिया था। और वो भी इसलिए किया था ताकि बादशाह उसको कॉन्फिस्केट ना कर ले। बादशाह जो है, इसलिए कि जब ये आगे जाएंगे, कश्ती ऐबदार होगी, बादशाह के सिपाही चेक करेंगे, कहेंगे ये तो बेकार कश्ती है, हमारी फोर्सेस में नहीं आ सकती, तो वो उसको छोड़ देंगे। तो ये जो डिफेक्ट था असल में, जो अल्लाह ताला ने डाला था, ये क्यों डलवाया था? ये डिफेक्ट था सेफ करने के लिए। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आती है जो हमें बहुत डिप्रेस कर रही होती है, हालांकि वो हमें किसी बड़ी मुश्किल से बचाने के लिए होती है, किसी बड़ी परेशानी से बचाने के लिए होती है। तो हर मुश्किल जो इंसान पर आती है, मोमिन का तवक्कुल होता है कि ये मुझे किसी बड़े मसले से निकालने के लिए आई है। और जब आप इस फ्रेम ऑफ माइंड से मुश्किलात को और क्लैमिटीज़ को देखेंगे, तो कितनी भी बड़ी क्लैमिटी हो, जब आप उससे बड़ी क्लैमिटी सोचेंगे, तो आपको उस जो प्रेजेंट क्लैमिटी मुश्किल होगी उसको हैंडल करना आसान हो जाएगा। और अल्लाह ताला इन कहानियों के ज़रिए हमें सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाना चाह रहे, अल्लाह ताला हमारा फ्रेम ऑफ माइंड बनाना चाह रहे हैं कि दुनिया में हालात के अंदर गुजारा होता कैसे है। कौन इंसान हम में से यहाँ बैठा है जो कहे कि मेरी ज़िंदगी सुपर परफेक्ट है, मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई, मेरे बच्चे, मेरे शौहर और मेरे घर वाले और मेरा मैका और मेरा ससुराल सुपर परफेक्ट है? कोई है हम में से? कोई भी नहीं है जो ये कहे। आप इवन एक रिश्ते को नहीं कह सकते पिन पॉइंट करके कि ये इंसान परफेक्ट है, कोई भी नहीं है। जब ये नहीं है तो आपको और मुझे कंटिन्यूसली झटके मिलते रहते हैं लोगों से। जब ये नहीं है तो मुझे और आपको कंटिन्यूसली जो है वो किसी ना किसी के जुमले से हर्ट फीलिंग्स होती रहती हैं, तब इसके अंदर हमें कंटिन्यूसली काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। जब बैक्टीरिया अटैक करते हैं, जब जर्म्स अटैक करते हैं, तो आपको वैक्सीनेशन की ज़रूरत होती है कि नहीं होती है? इसी तरह से जब अल्लाह ने अपने बंदों को इस दुनिया में छोड़ा, और ये दुनिया है ही आजमाइश, और इस दुनिया में बार बार बंदों को झटके लगेंगे, बार बार बंदों को जो है वो हिंड्रेंसेज आएंगी, तो कैसे हो सकता था कि अल्लाह अपने बंदों को वैक्सीनेशन और एनर्जी बूस्ट के बगैर और एनर्जी शॉट्स के बगैर छोड़ देता? ये कुरान खोला किस लिए अल्लाह ने हमारे और आपके सामने? इसलिए तो कि जो हालात आ रहे हैं इसमें तुम खड़े कैसे होगे? ये जो लोग तुम्हारे साथ ज्यादतियाँ कर रहे हैं, इन ज्यादतियों को तुम हैंडल कैसे करोगे? इन सारी दुनिया के मामलात में तुम अल्लाह का बंदा बन के रहोगे कैसे? तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर ये बात वाज़े कर दी इस कश्ती वालों के ज़रिए कि अल्लाह ने ये डिफेक्ट डलवाया ताकि उस कश्ती को और उसके कश्ती वालों को एक बड़े नुकसान से बचा सके। आप सोचें ज़रा, इन कश्ती वालों के मुकाम पर आकर थोड़ी देर के लिए इन्होंने, अगर हम वो ओपिनियन लें कि ये लोग हज़रत मूसा और हज़रत खदर को नहीं जानते थे, दो अजनबियों को इन्होंने अपनी कश्ती में बिठाया, कितनी हॉस्पिटैलिटी का मामला किया, तो पैसे भी नहीं लिए उनसे, ये भी नहीं कहा कि हमें कुछ उजरत दे देना इसके ऊपर, कुछ भी नहीं मांगा ना। और जब इन्होंने ये देखा होगा कि वो जिनको हमने फ्री में बिठाया था, राइड दी थी, वो हमारी कश्ती के अंदर जो है वो सुराख डाल के चले गए, तो गुस्सा तो आया होगा ना। इंसान है, कितना भी नेक हो गुस्सा तो आता है। हम में से कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो कहे कि नहीं मुझे तो गुस्सा ही नहीं आता कुरान पढ़ने के बाद। अगर आप ऐसी हैं तो मुझे बताइए आप कहाँ हैं, मैं आपको हार फूल पहनाऊँ थोड़े से। इसलिए कि कुरान पढ़ने के बाद ऐसा नहीं होता कि आपको गुस्सा ना आए। बाज़ औक़ात शैतान कुरान पढ़ने और पढ़ाने वालों के अंदर गुस्सा ज़्यादा डालता है ताकि लोग उनसे दूर होना शुरू हो जाए, ताकि वो खुद अपने इल्म को ज़ाया कर दें, ताकि वो खुद अल्लाह के करीब ना हो सकें। तो गुस्सा आया होगा इन लोगों को, लेकिन कितनी देर का गुस्सा और कितनी देर की फ्रस्ट्रेशन और कितनी देर का डिप्रेशन था द मोमेंट वो उस बादशाह के इलाके में पहुँचे होंगे और सिपाहियों ने ये डिफेक्ट देखे, उस कश्ती को रिजेक्ट कर दिया होगा, तो इनके दिल से क्या निकला होगा? अल्लाह तेरा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। वही डिफेक्ट जो इनको डिप्रेशन का शिकार कर रहा था, वही इनके लिए बायस नेमत बन गया। यह होता है, हम अपनी ज़िंदगियों में छोटी छोटी आजमाइशों से घबरा रहे होते हैं, मेरे अम्मा अब्बा मेरी पसंद के नहीं, माँ बाप कहते हैं मेरे बच्चे मेरी पसंद के नहीं, बीवी कहती है मेरा शौहर मेरी पसंद का नहीं, शौहर कहता है मेरी बीवी मेरी पसंद के नहीं। यही आपके स्ट्रॉन्गेस्ट लिंक बन सकता है। सिर्फ तवक्कुल अल्लाह पर अपना लेकर जाइए, फोकस अल्लाह पर फिक्स शिफ्ट कीजिए, उम्मीद अल्लाह से बांधिए, और अपना सारे का सारा यकीन अल्लाह के साथ अटैच कर लीजिए। फिर देखें अल्लाह आपको बंदों के साथ कैसे मामलात को हैंडल करना सिखाता है। तो इंस्टेंटेनियसली स्कॉलर्स कहते हैं कि इन कश्ती वालों का गुस्सा और इनकी जो परेशानी थी वो शुक्र में बदल गई, और यही हिकमत अल्लाह ताला ने हज़रत खिदर को सिखाई थी। स्कॉलर्स के मुताबिक ये जो मसाकीन थे, इन्होंने दो मुसाफिरों को अपने साथ बिठाया था और फ्री ऑफ कॉस्ट बिठाया था। क्या ये इनका सदका था? जनरोसिटी थी ना। आपकी जो भी जनरोसिटी होगी वो आपकी तरफ से सदका होगी। हम समझते हैं सदका होता है जो अपने ऊपर से यूं यूं घुमा घुमा के उतार के फेंक दिया, और फिर जब कहते हैं घुमा घुमा के उतार के फेंके हैं तो उसको नहीं दे सकते, उसको नहीं दे सकते, उसको नहीं दे सकते। एक नंबर वन, घुमा घुमा के उतार के फेंकने की ज़रूरत नहीं है। सदका सिंपल चीज़, सदका बहुत ब्रॉड टर्म है। सदका किसी की मदद के लिए भी दिया जाता है। सदका दो तरह का होता है। ज़कात इज़ अ फर्स्ट सदका, जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ किसी के हाथ में पकड़ाया जाता है, जिसको आप पहचानती हैं कि ये खुद ऐसी कोई निसाब नहीं रखता जिस निसाब को इस्लाम ने बांधा है कि इस निसाब से नीचे होगा तो ज़कात ले सकता है किसी से। ज़िम्मेदारी के साथ ज़कात दीजिए जिसको दीजिए, आंखें बंद करके लोगों को ज़कात मत दीजिए। ये आपका फ़र्ज सदका है। उसके अलावा आप जो भी देती हैं अल्लाह की खातिर, चाहे किसी की मदद के लिए, चाहे किसी को खुश करने के लिए, इवन अगर आपने तोहफा दिया मुझे, मैं कहूँ मुझे आपका सदका बहुत पसंद आया, आप कहेंगे हैं सदका थोड़ी है, अल्लाह अल्लाह माफ़ी माफ़ी। क्यों? सदका क्या है? आप अल्लाह की मोहब्बत में सिद्क दिल के साथ, इखलास के साथ दे रहे हैं। सदका सिद्क से है, खुलूस जिसमें आपका आ जाए, वो आप किसी को भी दें वो सदका हो सकता है। हम कहते हैं, फिर हमारा सवाल होता है, अच्छा सदका क्या होता है और खैरात क्या होती है? कोई फ़र्क नहीं है, एक ही चीज़ है। खैरात को निकाल दें अपने दिमाग से, अपनी एक ब्रॉड टर्म रखें जो कुरान ने दी है, सदका। सदका दीजिए, ज़रूरतमंद को भी देंगी, अल्लाह को खुश करने के लिए देंगी। अपनी बहन को भी सदका दे सकते हैं। हम कहते हैं वो तो हिबा होता है, हिबा भी है सदका भी है। अब सदके को जब आप सिद्क से याद रखेंगे, सौद दाल कौफ, सिद्क कहते हैं सच्चाई। मैं जिसके भी हाथ में कोई भी चीज़ रख रही हूँ, मैं तोहफा भी रख रही हूँ तो इसलिए नहीं कि मुझे इन एक्सचेंज तोहफा चाहिए, जो कि हमारे यहाँ टेंडेंसी थी एक टाइम पे, अल्लाह करे कि ख़त्म हो जाए, मगर अभी भी है बहुत सी जगहों के ऊपर। हम बर्थडे सेलिब्रेट ही क्यों करते हैं? हम ब्राइडल शावर्स करते ही क्यों हैं? हम बेबी शावर्स करते ही क्यों हैं? शावर्स का मतलब क्या है? क्या दुल्हन को शावर के नीचे बिठाएंगे? दीज शावर्स आर प्रेजेंट्स। एक्सपेक्टेशंस के साथ तोहफे तहाइफ एक्सचेंज नहीं होते। मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ, और सिर्फ अल्लाह की खातिर एक दूसरे को तोहफे तहाइफ जो हैं वो एक्सचेंज होते हैं। क्योंकि इन लोगों ने सदका किया था, जनरोसिटी का मामला किया था, वो नेमत जो अल्लाह ने इनको दी हुई थी कश्ती की शक्ल में, उसको इन्होंने सदका देकर अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल किया था। कैसे हो सकता था अल्लाह इनकी नेमत की हिफाजत ना करता? कैसे हो सकता था? हम घबराते हैं ना हमारी दौलत ख़त्म ना हो जाए। अगर आपको बहुत फिक्र है अपनी दौलत की, खुलकर सदका कीजिए, फिर देखिए अल्लाह ताला कैसे आपके माल के अंदर जो है वो बरकत लेकर आएगा। आप और इस रूल को अपनी हर नेमत पर अप्लाई कर लें। हम चाहते हैं कि हमारी आंखें ख़राब ना हो। अब 40 के बाद तो वैसे आपकी जाती है, आप कितनी लेज़र करवा लें फिर भी आपकी कम होगी। 40 के बाद आपकी आंखें जाएंगी, 60 के बाद आपकी हेयरिंग जाएगी, 55 के बाद आपका बीपी आगे पीछे हो जाएगा, 45 के बाद आपकी शुगर लेवल आगे पीछे हो जाएगी। ये सब तो होंगे, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप जिस चीज़ को, अपनी जिस नेमत को चाहती हैं कि यह आपके साथ प्रोलॉन्ग करे, आप उसको सदका करना शुरू कर दें। हर नेमत को अल्लाह के रास्ते में लगाना शुरू कर दें, थोड़ा 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 थोड़ा, अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। ये नज़र तो आ रहा है हमें, मसाकीन थे, कौन से लाखों रुपए का चेक्स दे दिए थे उन्होंने? कुछ भी नहीं, बस दो लोगों को जगह दे दी थी, आए बैठ जाएं हमारी कश्ती में, और अल्लाह ताला ने उनकी इस नेमत की इस तरह से हिफाजत कर ली। तो हम जिस नेमत को चाहते हैं कि वो कायम रहे, उसको अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में मफहूम आता है, एक हदीस आती है जिसका मफहूम आपके सामने मैं रख रही हूँ। आपने फरमाया, पुरानी कौमों में एक शख्स था, किसान था, और वो चाहता था कि उसने अभी अपना हल चलाया है और बीज डाला है, और उसकी बहुत ख्वाहिश थी कि बारिश हो जाए मेरे लैंड के ऊपर। तो वो दुआ कर रहा था, दुआ करते हुए उसने देखा कि बादल आना शुरू हो गए। बादल आए, और उसके बाद जब बादल उसके लैंड के ऊपर, उसकी ज़मीन के ऊपर पहुँचे, तो उसने एक आवाज़ सुनी और फरिश्ते ने आसमान से आवाज़ लगाई कि नहीं, इस जगह बारिश नहीं होगी, आगे चले जाओ, आगे बारिश होगी। अल्लाह ताला ने इस शख्स को सुनाया तो ये शख्स बहुत हैरान हुआ कि दुआ मैं कर रहा था और मैं इतनी देर से बादलों को आते हुए भी देख रहा हूँ और मुझे आवाज़ आई कि ये बारिश यहाँ नहीं होगी, आगे होगी। तो उसको फिक्र हुई, उसने कहा चलो लेट्स फिगर आउट इबादत जाते कहाँ है। क्यूरोसिटी तो इंसान के अंदर है ना, हम देखें तो असल में ये मेरी दोस्त आई हैं, मेरी सास से बातें क्या कर रही हैं। क्यूरोसिटी हर एक के अंदर होती है, तो इस शख्स के अंदर भी आई। ये बादल को फॉलो करने लग गया, फिर जो फॉलो कर रहा था उसने देखा कि एक और खेत तैयार था और बादल वहाँ गया और फिर बारिश बरसना शुरू हो गई। इस शख्स से रहा नहीं गया, इस शख्स ने उस खेत वाले जो ऑनर था, उसका किसान था, उससे कहा और उसको सारा मार्कमाला बताया कि मैं इस तरह से दुआ कर रहा था इतने दिन से और फिर बादल आते देखे और फिर मैंने बादलों से आवाज़ सुनी और यहाँ आके बारिश हो गई, तो ऐसी क्या ख़ास बात है आपकी ज़मीन में जो मेरी ज़मीन में नहीं है। उस शख्स ने कहा कि मुझे और तो कोई ख़ास चीज़ याद नहीं है, और अल्लाह के रसूल बता रहे हैं आप, ये हदीस है, बस इतना पता है कि मैं अपनी जब भी अपनी फसल हार्वेस्ट करता हूँ, जब भी मेरी फसल कटती है तो मैं 1/3 माल जो है वो अपने घर वालों के ऊपर खर्च करता हूँ, यानी अपना खाना पीना सस्टेनेंस। 1/3 माल जो है वो मैं उसको रोलिंग के लिए रखता हूँ, यानी मैं री इन्वेस्ट करता हूँ कि जब मैं अगली फसल दोबारा से जो है वो ग्रो करूँगा, और 1/3 माल मैं सदका कर देता हूँ। 1/3 इज अ लॉट। आपसे कोई कहे कि अपनी 1/3 माल को सदका कर दें, इट्स अ लॉट। आप सोचें, इस शख्स कहते हैं कि मैं अपनी हर फसल पर 1/3 माल सदका कर देता हूँ, और अल्लाह ताला का आप करम देखें कि ये 1/3 अल्लाह के रास्ते में देता था और उसकी वजह से उसका वो 1/3 जो ये घर वालों के पास रखता था, अल्लाह उसमें इतनी बरकत डालता था कि वो 10 times बढ़ जाता था। आप सोचें कि बादल जो है वो लिमिटेड उसकी लैंड के ऊपर बारिश कर रहा है, कितनी अल्लाह की रहमत है। और ये वही शख्स यकीन कर सकता है जो अल्लाह के रास्ते में फ्रीक्वेंट सदका देने वाला हो और उसकी बरकतों को देखने वाला और महसूस करने वाला हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आता है, एक मर्तबा एक कारोबार करने वाला था, एक अच्छा बिजनेसमैन था मदीना में, और उसका भाई था, भाई सगा भाई था। उसका भाई जो था वो रसूलुल्लाह के असहाबे सुफा में से आता था। असहाबे सुफा आप जानते हैं वो लोग थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को डेडिकेट कर दिया था इल्म हासिल करने के लिए, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ साई की तरह रहा करते थे दिन और रात। तो ये शख्स जो था जो बिजनेसमैन था मदीना का, इसका भाई जो था वो असहाबे सुफा में था और इसका भाई इस पर डिपेंडेंट था, यानी ही शेयर्स इज स्टेबल। कोई ख़ुद तो कारोबार में कोई मदद नहीं करता था, लेकिन वो भाई के घर ही खाना पीना और कपड़े का मामला और उठने बैठने का मामला होता था। एक मरतबा ये जो भाई था दूसरा जो कारोबार करने वाला था, इसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके शिकायत की कि जो मेरा भाई है कारोबार में मेरी मदद नहीं करता है, लेकिन आकर बस खाना खाता रहता है, जैसे हम नहीं बासुकात कहते हैं रोटी तोड़ते रहते हैं, कितने सख्त अल्फाज हैं कि हमारी रोटी तोड़ते हैं। हमारी रोटी किसने दी हमें, हम खुद तो खा नहीं सकते। अल्लाह चाहे तो एक निवाला क्या मेज़ आपके सामने लगी और आपके हलक से एक निवाला नहीं उतर सकता। अल्लाह चाहे तो एक निवाला ही हलक में अटक के रह जाए और वही मौत का बायस बन जाए। तो शख्स ने अल्लाह के रसूल से शिकायत की जबकि इसका भाई इल्म हासिल करने वाला था, दीन के रास्ते में लगा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लअल्लका तुरज़क़ु मिन अजलिही, शायद तुम इसी की वजह से रिस्क दिए जा रहे हो। इसलिए कि नेक भाई था, इल्म के मैदान में दीन की सर्विसेज में लगा हुआ था, उसको अपने घर में जगह देना और उसके ऊपर खर्च करना तो बरकत का बायस था। तो अल्लाह के रसूल ने उसको एनकरेजमेंट दे दी। ये कहानी हमें बहुत सी चीज़ें सिखा रही है। आप अपनी जिस चीज़ को बचाना चाहते हैं, औलाद को बचाना चाहते हैं ना, ताकि औलाद कायम रहे, हमारे बुढ़ापे का सहारा बने, औलाद को अल्लाह के रास्ते में लगाएं। जिस नेमत को बचाना चाहते हैं उसको आगे इसी तरह से बढ़ाएं। और आपको इन तीनों वाक़यात में ये कदर का मामला जो है ये बहुत प्रोमिनेंट नज़र आएगा। याद रखिए, जो जितना रिस्क है नसीब में वो मिल के रहेगा, अल्लाह जो देना चाहे वो कोई रोक नहीं सकता, और जब अल्लाह देना ना चाहे तो पूरी दुनिया आपको देने को तैयार हो वो आपको नसीब नहीं हो सकता। ये तवक्कुल इंसान को अपने पैरों पर हमेशा खड़े रखता है। यह तवक्कुल इंसान को लोगों पर कभी डिपेंडेंट नहीं करता, इंसान गनी हो जाता है इस मामले में। तो अल्लाह ताला ने यहाँ ये बात बता दी कि अल्लाह की तरफ से जो भी आजमाइश आती है उस आजमाइश पर सब्र करना और हर नेमत को अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, यह आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि अल्लाह ताला ने इसको यहाँ बता दिया। आगे आया دوسرے واقعے کی حکمت حضرت خدر جو ہیں وہ حضرت موسیٰ کو بتا رہے ہیں. آیت نمبر 80 وَأَمَّا الْغُلَامُ, اچھا اور جو وہ لڑکا تھا, فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنَ, اس کے والدین اس کے ماں باپ نیک تھے.
فَخَشِينَا
أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا, کہ وہ ان کو اپنے ساتھ اپنی سرکشی میں اور اپنے کفر میں انوالو کر لے گا. حضرت ابن عباس اس آیت کو جب پڑھا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے یہاں ایک لفظ اور موجود ہے, محذوف ہے, وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا, ایک لڑکا جو تھا اور وہ جو کہ کافر تھا. اس لیے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ عبداللہ ابن عباس کا مفہوم اور جو تفسیر ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ یہ لڑکا جو تھا یہ پیوبرٹی کراس کر چکا تھا, ان کا خیال ہے, اور یہ ہائی وے رابر تھا, اس لیے وہ اس لفظ کے اندر کافر کا لفظ جو ہے وہ امبیڈڈ سمجھا کرتے تھے. اور قرآن نے اس کے والدین کے لیے جو ٹرم استعمال کی ہے, فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنَ, یعنی وہ دونوں مومن تھے. آپ کو معلوم ہے جب قرآن مومن کی ٹرم استعمال کرتا ہے تو یہ ایک ہائر لیول ہے. دو لیول ہیں مسلمان کے, ایک ہے مسلم اور دوسرا ہے مومن. مسلم ہم سب ہیں, مومن کون ہے یہ میں اور آپ نہیں جانتے, یہ کون جانتا ہے؟ اور جس کو اللہ قرآن میں مومن کہہ دے اس کے مومن ہونے پر مجھے اور آپ کو کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو اللہ قرآن میں کہلوا رہا ہے کہ اس کے والدین لڑکے کے مومن تھے, یعنی نیک والدین تھے.
فخشینا,
تو ہمیں ڈر ہوا. اب یہاں فرسٹ پرسن نہیں آیا, وہاں آیا تھا حضرت خدر کے لیے عائبا, ان عائبا, میں نے عیبدار کر دیا اس کو. یہاں آیا
فخشینا,
ہمیں ڈر ہوا, یعنی اس ہمیں کے اندر حضرت خدر اور اللہ تعالیٰ دونوں بھی ہو سکتے ہیں. صحیح. تو انسان کو یہ خیال آ سکتا ہے کہ اللہ کو کیسے خوف محسوس ہو سکتا ہے, سوال آ سکتا ہے نا.
فخشینا,
ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کو خوف محسوس ہو سکتا ہے؟ آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے, جیسے آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے, اسکالرس کے ذہن میں بھی آیا. تو انہوں نے اس کا جواب دیا ہے, حضرت خدر نے اپنے ساتھ اللہ کو کیوں شامل کیا؟ ابن عباس کہتے ہیں الخشیت من اللہ ہی العلم, اللہ کا خوف اصل میں علم پر بیس تھا. فرق کیا ہے؟ ہم جب ڈرتے ہیں ہم انسرٹنٹی کی وجہ سے ڈرتے ہیں, ہمیں آگے پتہ نہیں ہوتا کیا ہونے والا ہے جب ہم ڈرتے ہیں. آپ کو ڈر کیوں, بچوں کو اندھیرے سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ سامنے سے کیا نکل آئے گا, بچے اس سے ڈرتے ہیں نا. جب ہمیں علم نہیں ہوتا تو ہم ڈرتے ہیں, جب ہمیں آگے آنے والے حالات کی انسرٹنٹی نظر آ رہی ہوتی ہے, شیورٹی نہیں ہوتی تو ہم ڈرتے ہیں. اللہ کا معاملہ بندوں جیسا نہیں ہے. اللہ نے اپنے علم کی بیسس پر گیج کر لیا کہ یہ ہوگا, یہ بچہ بڑا ہوگا اور یہ ڈیفینیٹلی کفر میں بڑھے گا اور اپنے کفر میں اپنے ساتھ اپنے والدین کو بھی انوالو کر لے گا. تو اللہ کا خوف کا یہاں اظہار اللہ کی علم پر بیسڈ ہے. ہو العلم, یہ اللہ کا علم ہے جس کی وجہ سے اللہ نے کہا. تو یہ کوئی خوف انسانوں والا خوف نہیں ہے. اگر ہم اس خوف کو انسانوں والا خوف سمجھیں گے تو ہم اللہ کی صفت کو نہیں پہچان سکیں گے. یہاں پر اللہ کے علم کے فیئر کی بات ہے کہ اللہ نے اپنے علم کی وجہ سے ایگزیکٹ گیج کر لیا کہ یہ نقصان ہوگا. بعض اسکالرز کہتے ہیں
فخشینا
کا مفہوم یہاں پر کرہنا کا آ رہا ہے, کہ ہمیں بہت برا لگا کہ ایسا ہونے والا ہے. حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان دونوں والدین کے لیے جو مومن آئے تھے, فرحا ابواہ لما ولیدا وحزن علیہ لما قتلا, جب یہ بچہ پیدا ہوا تو ماں باپ بہت خوش ہوئے تھے, اور جب یہ بچہ قتل ہو گیا تو ماں باپ بہت غم کا شکار ہوئے تھے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ بچہ زندہ رہتا تو یہ ان ماں باپ کو آلموسٹ ڈسٹروائے کر دیتا, اس لیے کہ دنیا میں ان کو کفر پر لے آتا, اور جو دنیا میں کفر پہ رہتا ہے اس کا آخرت کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جہنم. تو حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ پیدائش پر خوشی تو بہت ہوئی تھی اور موت پر غم بھی بہت ہوا, لیکن یہ کہ اگر یہ زندہ رہتا تو یہ ماں باپ کے لیے اور تکلیف کا باعث بن جاتا. فخشینا آئیں یرہقہما طغیانن و کفرا, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب یہ بچہ عمر میں بڑھتا تو ماں باپ بھی ساتھ ساتھ اس کی محبت میں گرو کرتے. آپ سوچیں اپنی اولاد کو اپنے سامنے لے کر آئیں, جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے آپ کی محبت میں بچے کے ساتھ کمی ہوتی ہے یا محبت بڑھتی جاتی ہے؟ اٹیچمنٹ بڑھتی جاتی ہے, محبت بڑھتی جاتی ہے, محبت کے شیڈز بڑھتے جاتے ہیں. तो अल्लाह ताला ने यहाँ जो बात मेंशन की है, अल्लाह को ये डर हुआ, अल्लाह को ये अंदाज़ा हुआ कि जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा बड़ा होगा, माँ बाप की मोहब्बत बड़ी होगी। जब ये बच्चा कुफ्र में ग्रो करेगा तो माँ बाप इसको इसके कुफ्र में मोहब्बत की वजह से सपोर्ट करने लग जाएंगे। कितना हमारे साथ टैली करता हुआ मामला है ये। आज हम भी अपनी औलादों की मोहब्बत में उनको गलत डायरेक्शन में जाने से रोक नहीं पा रहे होते। वो मोहब्बत ही तो होती है जो आड़े आ जाती है, वो मोहब्बत ही तो होती है जो हमें उनको पीछे से खींचने का बायस नहीं बनती है। हम कहते हैं समझ जाएगा, बेबी है अभी तो। एक तो बेबी ख़त्म नहीं होते हमारे, 6 साल का भी बेबी, 16 साल का भी बेबी, 20 साल का भी बेबी, 30 साल का भी बेबी। 30 साल का बेबी कभी देखा आपने? तो बताने का मकसद यही था कि ये जो यहाँ पर आया कि युरहिकहुमा तुगयानन व कुफ्रा, वो उनको तुगयान सरकशी ज्यादती और कुफर में बढ़ाएगा। यानी एक वक्त आएगा कि ये बच्चे की मोहब्बत जैसे जैसे बढ़ेगी, बच्चा कुफर में बढ़ेगा, माँ बाप भी आहिस्ता आहिस्ता उसके कुफर में उसको सपोर्ट करने लग जाएंगे, यहाँ तक कि वो ईमान छोड़कर कुफर में चले जाएंगे। अल्लाह ताला ने अपने इल्म की बेसिस पर यह सारा गेज कर लिया। कुछ स्कॉलर्स के मुताबिक ये भी आता है कि अल्लाह ताला ने यह अंदाज़ा किया था, जो रसूलुल्लाह की अहदीस से पता चलता है, कि यह बच्चा बड़ा होकर हाईवे रॉबर बन जाएगा और इसके वालिदैन इसकी मोहब्बत की वजह से इसको डिफेंड करेंगे, और इसकी डिफेंड करते करते फिर क्या होगा कि इसके गुनाहों को छुपाने लग जाएंगे। और जब इंसान अपनी औलाद के गुनाहों को छुपाता रहता है और उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश नहीं करता, तो फिर होता क्या है कि खुद भी वालिदैन जो हैं आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। बहरहाल, ये बच्चा हाईवे रॉबर बना या नहीं बना, या ये था या नहीं था, बॉटम लाइन इस कहानी से जो सबक दिया जा रहा है वो क्या है कि अगर ये बच्चा जिंदा रहता तो माँ बाप के ईमान के स्टेटस को इम्पैक्ट करता। ये अल्लाह का सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पर था, माँ बाप का ईमान खो जाता। और हदीस का मफहूम आता है कि जब आप किसी चीज़ से मोहब्बत करते हैं तो वो चीज़ आपको डेफ एंड ब्लाइंड कर देती है। मोहब्बत के लिए कहते हैं ना, मोहब्बत अंधी होती है, लव इज़ ब्लाइंड। यह हकीकत है। आप जिस चीज़ से दुनिया की मोहब्बत करने लग जाएंगे वो आपको आसपास की हकीकत बुला देगी। इंसान माल से मोहब्बत करता है, फिर ये नहीं सोचता कहाँ से आ रहा है। इंसान औलाद से मोहब्बत करता है, फिर ये नहीं सोचता कि रब का बंदा बन रही है या नहीं बन रही। इंसान फैशन से मोहब्बत करता है तो इसकी परवाह नहीं करता कि कितनी शरीयत से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इंसान जो है वो जब अपने ख़ानदान से अल्लाह से बढ़कर मोहब्बत करता है तो ये नहीं देखता कि कितनी शरीयत की हदूद टूट रही है, बस करता जाता है। तो अल्लाह के रसूल की बात है, यकीनन इसमें सच्चाई है कि इंसान मोहब्बत की वजह से अक्ल इस्तेमाल करना छोड़ देता है, रैशनली सोचना छोड़ देता है। बिल्कुल यही चीज़ यहाँ मेंशन की गई कि अगर माँ बाप मोहब्बत में बढ़ते तो वो कुफर की तरफ जाते। कुफर दो तरह का हो सकता है जिसको हम पढ़ आए हैं। एक ये कि वो इतना ज़्यादा नाफरमानियों में बच्चे के साथ आगे बढ़ जाते कि वो इस्लाम छोड़कर दूसरे ही मज़हब के हो जाते, और एक ये कि वो इस्लाम की नेमत की नाशुक्री करते, अल्लाह की दी हुई नेमतों को अल्लाह ही के अगेंस्ट इस्तेमाल करते हैं। नाशुक्री की सेंस में भी कुफर आ सकता है। तो ये दोनों पॉसिबल मीनिंग्स हो सकते हैं। जब बेटे का इंतकाल हो गया, यानी जब बेटे को कत्ल करवा दिया अल्लाह ताला ने, तो इसका फ़ायदा किसको पहुंचा सबसे ज़्यादा? वालिदैन को पहुंचा, इसलिए कि मोमिनीन वो थे और अल्लाह को इनका डर था कि ये कुफर और तुगयानी की तरफ चले जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने जब इनके बेटे को कत्ल करवाया तो इनका सब्र करना उस बेटे की मौत के ऊपर इनके ईमान को ना सिर्फ बचा गया बल्कि सब्र की वजह से इनके दर्जात को बुलंद कर गया। इसलिए कि औलाद के इंतकाल पर सब्र के जो अजर हैं वो बेतहाशा इनॉर्मस अहदीस में मिलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आता है जिसका मफहूम है, जब अल्लाह हमारे किसी बहुत ही प्यारे को ले जाता है, और बहुत ही प्यारे में अगर आप सबसे प्यारा देखें तो किसी की औलाद ही हो सकती है, सबसे बड़ी ट्रायल, सबसे बड़ा फितना, सबसे बड़ी आजमाइश माँ बाप की ज़िंदगी में औलाद का चले जाना। माँ बाप कभी औलाद को नहीं भूल सकते। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, जब अल्लाह हमारे किसी प्यारे को ले जाता है और इंसान उस पर सब्र करता है तो उसका सब्र अल्लाह के पास जन्नत से कम नहीं है। अल्लाह कितनी ही बड़ी आजमाइश डाले, कितने ही प्यारे को ले जाए, सब्र मांगे अल्लाह से। इसी तरह हदीस में आता है, एक औरत ने एक मर्तबा रसूलुल्लाह से कहा कि मेरे 3 बच्चों का इंतकाल हुआ है। आपने कहा 3? उस औरत ने कहा जी हाँ 3। आपने फरमाया कि तुम यकीनन जहन्नुम की आग से बच गए, इसलिए कि तुम्हारा एक थिक बैरियर ऑफ प्रोटेक्शन बनेंगे ये बच्चे तीनों जहन्नुम की आग से। हदीस में आता है एक बच्चे का लॉस ऑफ अ चाइल्ड बहुत बड़ी आजमाइश है और यकीनन बहुत तकलीफ दे भी है, लेकिन जब माँ बाप इसके ऊपर सब्र करते हैं तो अल्लाह उनके लिए जन्नत में एक महल बनाता है। और एक हदीस बहुत डिस्क्रिप्टिव और बहुत ही प्यारी आती है, वो आप अरबी में पढ़े तो उसका मफहूम ही अलग बनता है। हदीस में आता है अल्लाह जब किसी का बच्चा ले लेता है तो अल्लाह फरिश्ते से पूछता है कि क्या तुमने उसकी आंखों की ठंडक ले ली, तो फरिश्ता कहता है या रब्बी नाम, जहाँ बिल्कुल अल्लाह ताला ले ली। अल्लाह पूछता है फरिश्ते से क्या तुमने उसके दिल का सुकून ले लिया, तो बेसिकली वो जो दुनिया में सबसे उसका बिलवड था तुम वो लेकर आ गए। फरिश्ता कहता है नाम अज्जा वजल। अल्लाह पूछता है उस बंदे का इस पर रिस्पॉन्स क्या था, फरिश्ता कहता है अल्लाह उसने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा, उसने नमाज पढ़ी और उसने आपका शुक्र अदा किया। अल्लाह कहता है तुम गवाह रहना, मैंने अपने इस बंदे के लिए जन्नत में बैतुल हम्द बना दिया है, वो हम्द जो सब्र और औलाद की तरफ से आने वाली आजमाइश के ऊपर सब्र के ऊपर की गई थी, अल्लाह उस हम्द की बेसिस पर जन्नत में बैतुल हम्द बना देता है। हदीस में आता है जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है, और ये गौर से सुने, जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है उसे आजमाइश में डालता है, और जितने इम्तिहान बढ़ते हैं उतना उस शख्स के दराजात अल्लाह की नज़र में बढ़ते जाते हैं। आपकी ज़िंदगी में जितनी आजमाइशें आ रही हैं यकीन रखें अल्लाह इस वक्त आपके बहुत करीब है। जिस वक्त आपको जितना रोना आता है अल्लाह उस वक्त आपके बहुत करीब होता है, और आप सोचें कि अल्लाह जैसी हस्ती आपके करीब हो तो फिर आपको दुनिया का क्या डर होना चाहिए, अल्लाह आपके मामला संवारेगा। तो अल्लाह ने इसके वालिदैन को इस तरह से आजमाया। इंशाल्लाह कल इसी आयत को, आयत नंबर 81 को आगे शुरू करेंगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे लिए इन कहानियों से वो सबक लेना आसान बना दे जो हमारी डे टू डे लाइफ में शामिल हो जाए। अल्लाह हमें कदर पर यकीन रखने वाला बना दे। अल्लाह हमें राजी बाय रज़ाए रब रहना सिखा दे। अल्लाह हमारी औलादों को और हमारी तमाम नेमतों को अपने रास्ते में इस्तेमाल कर ले। अल्लाह हमें अपनी नेमतों की हिफाजत करनी नहीं आती, चाहे वो मेरी ज़िंदगी हो, मेरी सेहत हो, मेरी फाइव सेंसेस हो, मेरी औलाद हो, मेरे घर वाले हो या मेरी औलाद हो, अल्लाह हमें इनकी हिफाजत करनी नहीं आती। अल्लाह आप हमारी रहनुमाई फरमाइए कि हम कैसे बेहतरीन तरीके से इनको अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल करें कि इनकी हिफाजत दुनिया और आखिरत दोनों में हो जाए। अल्लाह हमें हमारे वालिदैन के लिए और हमारी औलादों को हमारे लिए बेहतरीन सदका जारिया बना दे। अल्लाह ये जो हमारे दिलों पर आपके कलाम से नरमी आ रही है, अल्लाह इस नरमी को हमारे लिए दुनिया में मुत्तकी बनकर रहना इसके लिए हुज्जत बना दे। अल्लाह आखरत में हमारे इन दिनों को, हमारी इन इबादात को हमारे नेक आमाल की किताब में से निकाल। अल्लाह तराजू के अंदर हमारे इन मेहनतों को कॉटन की तरह मत बनाइएगा। अल्लाह हमारी इन नेकियों को अहद पहाड़ के बराबर वज़न दे दीजिए। अल्लाह हम कमज़ोर हैं, अल्लाह हम फ़कीर हैं, अल्लाह आप गनी हैं। अल्लाह हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा ले। बारक अल्लाह ली व लकुम फिल कुरान अल हकीम व नफ़ानी व इयाकुम बि आयाति व ज़िक्र अल हकीम। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।